ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
कुछ नहीं था तो मृत्यु से ढका गया. बंध्या पुत्र को ढकना पड़ता है कंबल से, किससे ढकेंगे? बंध्या पुत्र नहीं, उसको क्या ढकना? और सस विषाण को ढक दिया, ढकना क्या है? तो पहले कुछ नहीं था तो मृत्यु ने आवेदन आग्रह आश्रित आवृत आशी थी, मृत्यु से आवृत ढका था. ये वृद्धा ने क्या आया, कुछ नहीं था सब मृत्यु से ढका गया था. जो ढकने वाला यदि कोई था, ढका गया कुछ था तो तुच्छ कैसे होगा? कोई पदार्थ हो तो उसको ढकना, ढकने वाला भी कोई पदार्थ यदि है तो असत्य कैसे होगा? अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त नहीं था, कारण अवस्था में कार्य नहीं दिखता है तो कारण से कार्य आवृत रहता है, इसे कहा जाता है. मिट्टी पिंड अवस्था है, घट आदि नहीं बना था तो घट आदि आवृत, मतलब घट आदि अभिव्यक्त नहीं था, अनभिव्यक्त हुआ था, अनभिव्यक्त था उसकी अभिव्यक्ति हुई. इसी प्रकार विभिन्न प्रकार कहा गया, असत मत नहीं, तुच्छ नहीं हो सकता है. असत से सत की नहीं, सद ही था. और जो सत एकम द्वितीयम, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं. वहां मांडू का कार्यक्रम में गौड़ा पदाचार्य ने कहा, उत्पत्ति असत से सत क्या, सत से भी सत की उत्पत्ति नहीं होगी, एक ही सत है. सत से सत की उत्पत्ति, घट से घट की उत्पत्ति होती, पट से पट की उत्पत्ति होती, घट से पट की उत्पत्ति होती नहीं, तो सत से सत की उत्पत्ति नहीं. तो कोई कहेगा घट से पट नहीं हुआ किन्तु मिट्टी से तो घट बना, सदरूप मिट्टी से घट बना, तंतु से पट बना. तो वहां कहते घट से जब घट नहीं बनता है, सत से सत नहीं बना, कपाल से घट बना, तंतु से पट बना, ये तो कहते हैं, हम भी कहते हैं, किन्तु विचार कर देखे ना, तंतु और पट, कपाल और घट, ये दो सत है या नहीं? सत से सत उत्पत्ति होने के लिए उसी सत से उसी की उत्पत्ति, उसी घट से उसकी उत्पत्ति होती क्या? जिसी घट है उसी घट से उसी घटी की उत्पत्ति होती है ना, इसी घट से इस घटी की उत्पत्ति होती है. तो तंतु से पट की उत्पत्ति कहेंगे तो तंतु भी सत, पट भी सत, दो सत हो तंतु से पट की उत्पत्ति होगी. एक ही सत होगा तो उत्पत्ति कैसे कहेंगे? सत से सत की उत्पत्ति हो तो तंतु सद रूप है, अरे पट सद रूप है. कपाल मिट्टी पहले थी, घट बना. अभी मिट्टी की सत्ता, घट की सत्ता, दो सत्ता हो जाए तो कहेंगे मिट्टी से घट बना. एक 10 ग्राम सोना लो, भूषण बनाओ, सोना 10 ग्राम, भूषण 10 ग्राम, 20 ग्राम ले आओ सोनार से, सोना से भूषण बनाए ना. अतः 1 किलो समझे, 1 केजी सोना दो, भूषण बना दो, सोना से भूषण बन गया. सत से सत की उत्पत्ति, ये भी सत वो भी सत, ये भी 1 किलो वो भी 1 किलो, 2 किलो जोड़ के ले लो. अर्थात सोना से भिन्न है क्या भूषण? तो सोना से भिन्न है ही नहीं तो इससे उत्पत्ति क्या कहना? सोना से सोना की उत्पत्ति, सोना अलग सत, इसके अलग सत, एक कपाल का अलग, कपाल की सत्ता अलग, घटे की सत्ता अलग है, दो सत्ता है. मिट्टी को अलग करेंगे तो घटे की सत्ता है, सत से भिन्न उसकी सत्ता कहेंगे. सोना से भिन्न भूषण की सत्ता, सोना को अलग कर भूषण की सत्ता है क्या? तंतु से अलग पट की सत्ता है, तो दो सत्ता होते एक सत्ता से दूसरी सत्ता की उत्पत्ति कहेंगे. इसी प्रकार कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता अलग हो तो कपाल से घट बना, मिट्टी से घट बना कहो, मिट्टी अलग घट अलग दो सिद्ध हो, मिट्टी से घट बना कहो. इसलिए सत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, और असत से असत की उत्पत्ति, शशि विषाण से बंध्या पुत्र की उत्पत्ति, बंध्या पुत्र से नर विषाण की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति नहीं, और सत से असत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति वो भी नहीं. असत की उत्पत्ति क्या? जो असत्य उसकी उत्पत्ति होती है, नाश होता है. असत के ना उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति स्थिति लय कुछ ही नहीं. इसे असत की उत्पत्ति सत से अथवा असत्य किसे होगी? सत्य नहीं असत्य से नहीं, असत्य की उत्पत्ति नहीं सत्य नहीं असत्य से नहीं। अच्छा असत से उत्पत्ति सत्य की असत्य की होगी, असत्य से उत्पत्ति किसकी होगी, असत से किसकी उत्पत्ति नहीं, असत से किसकी उत्पत्ति नहीं हो, असत से उत्पन्न होगा किसे, तो असत उत्पन्न नहीं होता है किसे नहीं होता, सत्य नहीं असत्य नहीं दो चला गया, और असत्य से उत्पन्न होगा सत्य या असत कोई नहीं, तो अभी देखो चार प्रकार हो गया, सत से सत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से असत्य की उत्पत्ति नहीं, और असत्य की उत्पत्ति असत्य नहीं से ही सत्य नहीं, तो सत से असत्य की उत्पत्ति नहीं, एक राज सत से सत्य की उत्पत्ति, सत से सत उत्पत्ति होने के लिए दो सत पहले सिद्ध हो तो सत से सत, इसलिए उत्पत्ति किसी को होती ही नहीं है, मांडू को कार्यक्रम में बता दिया, घटो उत्पन्न हुआ व्यवहार करते हैं, पिता से पुत्र बना, कपाल से घट बना, तंतु से पट बना, ये तो कहते हैं, किंतु उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है किससे किसकी उत्पत्ति, इसलिए कहे अजातवाद, उत्पत्ति है ही नहीं, स्वप्न में दिखता है सब आकाश पर्वत, स्वप्न प्रपंच दिखता है, ये बताओ पहले आकाश बनता है उसके बाद पर्वत बनता है उसके बाद हाथी आते किसके बाद, कोई क्रम है, कुछ नहीं, सपन सो दिखता है, इसी प्रकार है उत्पत्ति के बिना सब दिखते हैं, सब दिखते हैं तो उत्पत्ति हुई इसी बात नहीं है, तो एक सत्व एवं समयदम अग्रास सत ही था, एकदम अग्रासित एक में अद्वितीय जो पहले कहा था वही है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो सत ही था एक में अद्वितीय, तो सत से कैसे उत्पन्न होगा, असत से यदि सत की उत्पत्ति नहीं होती है, सत से भी सत की तो उत्पत्ति नहीं होती है, आप निराकरण करते तो असत सत जाए तो कहा था, अभी आपके मत के अनुसार सत ही था सत से जगत की उत्पत्ति हुई, सत से सत की उत्पत्ति ये भी कैसे है, वस्तु तो उत्पत्ति क्या है, पहले सर्प था, सर्प से कुंडल जैसे बन गया, सर्प लंबा था कभी इसे गोल करके इसे रह जाता है, एक आकार हो गया दूसरे आकार, कभी इसे रहता है, अलग अलग आकार होता है ना, नहीं कभी तंतु अलग प्रकार था अभी पटाकार बन गया, उत्पत्ति कुछ नहीं है, फिर तंतु ही अलग आकार से रह जाने से उसका नाम पट कह दिया, पहले मृदा आकार चूर्ण मिट्टी, मिट्टी था चूर्ण रूप मिट्टी थी, उसको मिट्टी में पानी देकर के पिंड बना दिया, फिर कपाल बन गया, फिर घट बन गया, वही मिट्टी के चूर्णाकार पिंडाकार कपलाकार घटाकार अलग अलग आकार बन गया, वही मिट्टी है अन्य अन्य रूप से, वही सुवर्ण है, सोना को पहले पिंड सोना टुकड़ा टुकड़ा था गर्म करके पिंड बना दिया, फिर उसको पीट करके ऐसे तार जैसे बना दिया, फिर उस तार को लेकर के भूषण बना दिया, फिर भूषण को मिला करके एक माला बना दिया मुकुट बना दिया, ऐसे सोना का ही अलग अलग आकार रूप से अवस्थान ही है, आद्य अंत मध्य में सर्वत्र सोना ही सोना है, इसी प्रकार सदरूप एक था नाम रूप नहीं था, अभी नाम रूप आकार हो गया, वही सद अभी आकाश रूप से थी, तो वही वायु रूप से वही पृथ्वी रूप से वही सद ही भिन्न भिन्न आकार से दिखता है, सर्वत्र सद ही सत्य है, और आकार जितने दिखते नाम रूप सब मिथ्या है, उत्पत्ति किसी के नहीं है, सत ही अन्य अन्य रूप से दिखता है, सारे पदार्थ सत से अभिन्न है, सत से कोई भिन्न नहीं, सत से यदि भिन्न होता सत सत नहीं कहते, अच्छा असत से यदि सारे जगत की उत्पत्ति होती, सोना से बना गया भूषण, जितने भूषण बनाए सोने से सब सोना है, सब भूषण सोना है, इसी प्रकार सत से जितने बने गए आकाश आदि सब अस्थि अस्थि कहते, आकाशम अस्थि वायु अस्थि तेजो अस्थि पृथ्वी अस्थि, यदि असत से बनेगा तो क्या करना चाहिए, सोना से बनेगा सोना, असत से बने पर आकाशम असत वायु रसत, आकाश है नहीं वायु नहीं जल नहीं कुछ नहीं, असत तुच्छ है, सब असत असत कहना चाहिए, चांदी से जितने भूषण बनाएंगे सब चांदी है ना, रजत है ना, है सत्य बना तो सत, असत्य बना तो सब को असत सत कहना चाहिए, भूषण जितने बना ये भी सोना वो भी सोना वो भी सोना ये भी सोना, भूषण जितने सोना से बनाए देखाओ 10-50 पर रखा उसने सोना कोई है, मना कर दी सोना है, कितने है आधा है पूरा, सोना से बना सब सबको सोना कहते हैं। इसी प्रकार सत से बनाएंगे तो पृथ्वी जल तेज सबको सत कहते हैं। असत से बनने से क्या कहना चाहिए? ये पृथ्वी भी असत, ये भी असत, जल भी असत, वायु भी असत, सब असत, नास्ति नास्ति कहो, ये कहना चाहिए। सत सत क्यों कहते? ये प्रमाण है जिसे भूषण सब को हम सोना कहते, क्या सिद्ध होगा? सोना से बना। इसी प्रकार ये सब अस्थि अस्थि कहते, पृथ्वी घट पट आदि अस्थि है, क्या सिद्ध होता है? एक सत से बना, और सब सदरूप ही है, सब सदरूप ही है, एक सदरूप है, उसका अलग अलग परिणाम, अलग अलग आकार है। मिट्टी से बना गया घट अलग अलग दिखता है, सुवर्ण से बना गया भूषण अलग अलग दिखता है, नाम रूप अलग अलग बन जाए, तोड़ मोड़ कर फिर सोना को सोना है। इसी प्रकार ये सारे प्रपंच सब दिखता है, एक सदरूप है, पहले था या अभी है? सोना से भूषण बनाने के बाद पहले सोना था या अभी है? भूषण बनने के बाद है, अब भूषण को तोड़ देंगे तो? इसी प्रकार पश्चात हम यदि तच्च यो वशिष्यते स्वस्मिन्, पहले सत, उत्पत्ति के बाद सत, प्रलय होने के बाद सत, एक सत है तीनों काल में, इसी तीनों काल में सोना ही सोना है, तीनों काल सद ब्रह्म अभी है, सद ब्रह्म सर्वत्र सदरूप से अनुसूचित, सदरूप से अनुगत, सदरूप से उसकी उपलब्धि करनी चाहिए। अन्य व्यतर का अभ्याम यद सर्वत्र सर्वदा, उसको जानने के लिए सद है। इसलिए सत से सत उत्पन्न जो कहते उत्पत्ति नहीं है, सत का अलग अलग आकार है, अलग अलग आकार हो करके। अभी ये कहा गया ब्रह्म सदरूप ब्रह्म निरवय है सवय है, निरवय है, कोई के डरते निरवय कहने के लिए निरवय है सद ब्रह्म, निरवय है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम दिव्य ही अमृत पुरुष सभाभ्यंतर है जो, ये कहा गया। यदि निरवय है सत, उसमें से कैसे कार्य से बना विकार अवयव सो कैसे बन गया? ब्रह्म निरवय, निरवय ब्रह्म से ये सब कैसे बन गया? ऐसा सावय पदार्थ कैसे बन गए, कैसे बन जाएगा? और इसलिए अब आगे कहा, पहले कहा था निरवय ब्रह्म से सावय सारे पदार्थ कैसे बन गया, जैसे रज्जु से सर्प बन जाता है, भ्रांति काल में सर्प दिखता है ना, नहीं वो सर्प के अवयव कहां से आया? रज्जु के अवयव से सर्प बन गया, अवयव सर्प हो जाता है, रज्जु के अवयव सर्प बन जाएगा या सर्प का अवयव पहले बन करके आगे सर्प बनता है? इसको कहते विवर्त, अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त स उदीरित, यस तात्विक अन्यथा भाव परिणाम उदीरित, यस तात्विको अन्यथा भाव परिणाम उदीरित, अतात्विको अन्यथा भाव विवर्तः स उदीरित। तात्विक अन्यथा भाव को कहते परिणाम, दूध दही हो गया परिणाम हो गया, अतात्विक अन्यथा भाव का नाम विवर्त, अतात्विक अन्यथा भाव मतलब अन्यथा भाव होता ही नहीं, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार होना, अन्य प्रकार होना का नाम विवर्त, विरुद्ध न प्रकार वर्तते विवर्त। अतात्विक अन्यथा मतलब वास्तव अन्यथा नहीं, वास्तव कुछ परिवर्तन नहीं होकर के जो होता है अलग प्रकार दिखता है उसको कहते विवर्त। रज्जु में जो सर्प दिखता है उस समय रज्जु रहती है? कुछ रज्जु में परिवर्तन होता है? सर्प दिखते समय रज्जु है? हाँ, सर्प दिखते समय रज्जु है किंतु दिखती, सर्प दिखते समय रज्जु नहीं दिखते, सर्प भ्रांति काल में सर्प देखते समय रज्जु दिखती है क्या? नहीं दिखती। देखो मेरा प्रश्न का हमेशा उत्तर दो, रहेगी रहेगी रहेगी, फिर आ इतने बड़े लंबा वाक्य, दिखती है नहीं दिखती रज्जु, जितने कहा ना, रज्जु में जिस समय सर्प भ्रम दिखता है, जब रज्जु में सर्प भ्रम होता है उस रज्जु को कोई कपड़ा से ढक देगा तो आपको सर्प दिखेगा? क्यों नहीं दिखता है? रज्जु नहीं दिख करके सर्प दिखता है, रज्जु को ढक गया, रज्जु नहीं दिखे सर्प दिखना चाहिए, तो क्या मानना पड़ेगा? रज्जु नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखता है, रज्जु दिखने पर सर्प दिखता है। तो सर्प दिखते समय रज्जु दिखती है, किन्तु रज्जु तेन नहीं दिखते, रज्जु रूप से नहीं दिखती। इदम तेन अयम कुछ दिखती है, सर्पत्व नहीं दिखती है। नहीं तो रज्जु नहीं रहे तो सर्प रहे। रज्जु अधिष्ठान सर्प की सत्ता है ही नहीं। सर्प अस्ति तत्र सर्प अस्ति सह सर्प अस्ति जब कहते हैं, रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है और रज्जु का भान होने पर सर्प दिखेगा। रज्जु नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा। रज्जु को देखते हैं किंतु रज्जु करके निश्चय नहीं हुआ। रज्जु का स्फुरन ही सर्प में भान, सर्प का अलग भान है ही नहीं, है ही नहीं। सर्प भान कैसे होगा? इसे अधिष्ठान रज्जु अस्वसत्ता अस्वस्फूर्ति को देती है। अध्यस्त में, अध्यस्त में जो सत्ता और स्फूर्ति है वो अध्यस्त सर्प की ना तो सत्ता है ना तो स्फूर्ति है। स्फुरन तो अधिष्ठान रज्जु का ही, रज्जु दिखती है, रज्जु की सत्ता है, रज्जु है। दिखते समय रज्जुत्व निश्चय नहीं होता है तभी सर्प आ गया। ये सर्प वास्तव नहीं, इसलिए कहते जिस प्रकार सर्प दिखते समय रज्जु वास्तव है सर्प दिखता है, इसी प्रकार ये जगत सद ब्रह्म में सारा जगत दिखता है। रज्जु जड़ होकर के यदि सर्प बन सकती है आपके दोष के कारण रज्जु सर्प बन गया, आपके अज्ञानी के कारण सर्प बन गया। यदि बन सकता है परमात्मा ये सद ब्रह्म ये जगत रूप से नहीं दिख सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। महामाया भी वो भी अज्ञान से, माया से, माया मतलब अज्ञान से उनकी शक्ति है, उसका नाम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान से भी जगत दिखता है। और स्वप्न काल में आप सारे प्रपंच बना करके देखते हो नहीं? आकाश पर्वत समुद्र स्वप्न में कभी दिखता है? समुद्र कभी दिखेगा स्वप्न में? पर्वत दिखेगा, आकाश दिखेगा, किंतु स्वप्न में जो आकाश दिखता है इतने बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है? बड़ा दिखता है। हाँ, आकाश छोटा आकाश नहीं दिखता स्वप्न में, या छोटा समुद्र ऐसा नहीं, ऐसे ही समुद्र दिखता है। ये पर्वत बड़े बड़े दिखते है। कौन बनाता है? आपके निद्रा के दोष से आप ही अज्ञान से बना देते हो। आपके पास सामर्थ्य थी प्रपंच बनाने के, रोज रोज स्वप्न में बना देते हो। जैसे सपने में आप बना देते हो इसे परमात्मा भी जागृत तो बना कर दिखा देते हैं। बना करके हुई अभी बताएंगे आगे किस प्रकार बनाए। यही प्रश्न है, निरवय सदरूप से सावैव नाम रूपात्मक कैसे उत्पन्न हुआ? खाली इतने बता दिया जिस प्रकार रज्जु में सर्प दिखता है इसी प्रकार सद ब्रह्म में सारा जग दिखता है। वाचारंभम विकार नामध्येय मृतिका इति वो सत्यम पहले कहा था। वाणी का आलम्बन मात्र है, विकार तो नाम मात्र है, कारण मिति ही सत्य, इस प्रकार सद ही सत्य है और बाकी सब दिखता है नाम रूपात्मक है। वाणी का आलम्बन मात्र है, विकार नाम को कोई पदार्थ नहीं है। और कैसे सृष्टि हुई इसको कहने के लिए आगे, तद इच्छत बहु श्याम प्रजाएति तत्तेजो सृजत तत्तेज इच्छत बहु श्याम प्रजाएति तद अपो सृजत तस्माद् यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्यापो जायन्ते। तद इच्छत, इच्छण किया, विचार किया, तद सत शब्द से जिसको कहा सदैव समेदम ग्रासित एकमेवाधितम जो सद्रूप था ब्रह्म, तद इच्छत, इच्छण किया, विचार किया, दर्शन के विचार किया, ज्ञान रूप दर्शन किया, किसे के विचार किया, बहु श्याम बहुत हो जाऊं, बहुत श्याम बहुत हो जाए। बहुत कैसे हो जाएंगे? प्रजाय प्रकर्षण जाए उत्पादय बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं, स्वयं स्वयं बहुत होकर बन जाए, जैसे मिट्टी बहुत घटा आदि बन जाती है, इस वह बहुत हो जाऊं ऐसा हुआ। अथवा रज्जु जैसे सर्पादि करे बुद्धि कल्पित हो जाती है, इसी प्रकार बहुत हो जाऊं ऐसे विचार किया। ब्रह्म सूत्र में एक सांख्य दर्शन है, छह दर्शन में वो कहते कार्य दिखता है तो कारण उसके समान, आपको मालूम है कार्य देखा तो इसके तंतु लाल लाल होंगे, कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाता है। किसी पदार्थ है सुख दुख मोह का साधन, सुख दुख भ्रांति होती है, कभी सुख कभी दुख मोह होता है, सुख सप्तगुण का कार्य, रजगुण का है दुख, तमगुण का है मोह। तो पदार्थ सुख दुख मोह देने वाले सप्त रज तम त्रिगुणात्मक है पदार्थ, सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है। सोना कार्य है तो कारण सोना होगा, ये आपने मालूम है, आपको अभी बताया। और कार्य यदि त्रिगुणात्मक है कारण भी त्रिगुणात्मक होगा, और आप भी मानते माया त्रिगुणात्मक है, माया से जगत की उत्पत्ति। वो माया एक प्रकृति है, जगत का उपादान कारण है, और पुरुष चेतन है असंग, आप भी मानते वो कहते असंग पुरुष है, प्रकृति माया है कि है माया से जगत बना। और माया से जगत बना सुनने पर सबको क्या लगता है, परमात्मा तो एक है और उनकी कोई है माया नाम को घर वाली, वो से जगत बनाए, कोई माया है, कोई देवी शक्ति माया कोई है, ऐसे माया से बना, माया से बना बोलते कहते 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 ऐसे दिमाग में आ गया परमात्मा के साथ कोई माया नाम को कोई है, वो जगत बनाया। और जो माया से जगत बना, इतने बड़े जगत माया क्या मिथ्या है, सती असत्य है, वो वेदांति लोगों कहेंगे ये इतने बड़े जगत बन गया कार्य, उसका कारण मिथ्या, मिथ्या से जगत कैसे बन जाएगा। इसलिए कहते माया जो प्रकृति कहते हो, माया तो आयाम तो प्रकृति विद्या माया न तो महेश्वर, माया त्रिगुणात्मक श्रुति कहती है प्रकृति, वो प्रकृति नाम के एक पदार्थ है। सांख्य लोग कहते चेतन ब्रह्म से भिन्न है, सत्य है माया, सत्य है। आप अनिर्वचन कहते अनिर्वचन है तो ये जगत कैसे बन जाएगा, मिथ्या सर्प से कहीं पर्वत बन जाता है कभी, रज्जु में सर्प अनिर्वचनीय, रज्जु सर्प से कभी पर्वत समुद्र बनता है क्या, तो माया से जो पर्वत कैसे बनेगा। इसे अनिर्वचन है माया से जगत कैसे बनेगा, जगत सत्य है इसे उसका कारण भी सत्य है। जगत आप मिथ्या मिथ्या कहेंगे, खाली आपको रट रट करके सुन सुन के मिथ्या कह देते हो, जगत सत्य है, जैसे जगत सत्य है उसका कारण भी सत्य है, वो मिथ्या क्यों होगा, अनिर्वचन ही कैसे। तो माया एक पदार्थ है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका सत्य है, और नित्य भी है। नित्य दो प्रकार है, एक कूटस्थ नित्य एक परिणामी नित्य। कूटस्थ नित्य है ब्रह्म, कूटवत्त निर्विकार नित्य, उसका परिणाम नहीं होता नित्य। और माया प्रकृति प्रधान उसको कहते त्रिगुणात्मिका, उसका परिणाम होता है, वही जब सृष्टि होती है सत्व रजस्तम तीन गुण साम्य अवस्था है तो प्रधान रूप स्थिर है, विषम परिणाम होगा तो सृष्टि हो जाएगी। जब प्रलय होगा तीन गुण साम्य हो जाएगा तो प्रकृति, प्रकृति का परिणाम हो जाता है, फिर प्रलय हो गया तो प्रकृति रही, तो प्रकृति का परिणाम हुआ प्रकृति रहा, वही प्रकृति नित्य है, परिणामी है और नित्य भी, उसका परिणाम होता है, परिणाम होने के बाद फिर अंत में त्रिगुणात्मक हो गया, इसलिए नित्य है, उसको कहते परिणाम नित्य। पुरुष जो चेतन है वे वो कूटस्थ नित्य, और प्रकृति प्रधान को कहते परिणाम नित्य, उससे जगत की उत्पत्ति होगी। और एक ईश्वर अलग मानना क्या जरूरत है, जीत निमित्त का अनुपादान को दोनों क्यों होगा, पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, वो प्रकृति जगत बनाती है, जड़ है क्यों बनाती है, पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए, भोग अपर्भोग देने के लिए बनाती है, आप भी मानते माया। तो सांख्य मत वेदांत मत के थोड़ा समीप में है, अन्य जितने द्वैत मत है ये भी द्वैत है, पुरुष को एक नहीं चेतन बहुत ही, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम करके श्वेता क्षेत्र में आए मंत्र है, जैसे एक बकरी सफेद काला लाल तीन प्रकार है, उसे अलग बच्चा पैदा करती है, इसी प्रकार ये प्रकृति बहुत जगत बनाया। तो प्रधान मत है, ये उनका मत है सांख्य मत है, और कपिल सांख्य कहते कपिल बड़े ज्ञानी, तो वो मत उनका है, ये एक मत, इसलिए सारे लोक में लगता है कि कार्य जो सत्य उसका कारण कोई सत्य होना चाहिए। और माया से जो माया इंद्र माया भी पुरु रूपये थे, माया तो प्रकृति विद्या श्रुति में तो माया शब्द आया, किन्तु माया कहते कहते सुनते सुनते दिमाग में बहुत गोल हो जाता है, माया नाम को कोई देवी है ना, देवी के नाम में आया बहुत कुछ है, देवी है, वही देवी के शरण में सब ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं, जब उनको विपत्ति आती तो वही रक्षा करती है, तो कोई है उसको मिथ्या कैसे कहेंगे। तो प्रकृति एक सत्य पदार्थ है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये दिमाग में आ जाए तो अहम ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर और पुरुष कितने हैं? बहुत ही। अद्वैत मत कैसे होगा? प्रकृति एक ही, अब पुरुष तो नाना है, इसलिए एक में वादित्य श्रुति आदि का अर्थ अलग करने के लिए उनका मत सांख्य मत। जब तक सांख्य मत का निराकरण नहीं होगा तो अद्वैत मत सिद्ध नहीं होगा। सारे जितने द्वैतवादी सबसे आगे आगे सांख्य हो, और श्रुति के साथ उनका थोड़ा मिल जाता है। अभी प्रकृति मानते वो भी प्रकृति, त्रिगुणात्मक वो भी त्रिगुणात्मक, आप पुरुष को निर्लेप कहते वो भी पुरुष को निर्लेप कहते, चेतन पुरुष को निर्लेप कहते, आप कहते एक ही पुरुष आत्मा, वो गताने के साफ दिखता आने के, एक ही क्यों मानना, एक कैसे होगा? तो वो मत आए तो बड़े सबसे प्रधान मल्ल, बड़े योद्धा जो युद्ध करने के लिए प्रधान मल्ल को हरा दिया, भीष्म पितामह सरल सजा में आ गए तो निश्चित हो गया हारेंगे और करो का कर पराजय। इसी प्रकार प्रधान मल्ल यदि उसको हम खंडन कर देंगे द्वैतवाद का निराकरण होगा। व्यास जी ने पहले चार सूत्र पहले ब्रह्म सूत्र में बनाने के बाद पंचम सूत्र है इच्छते ना शब्दम, चार सूत्र है पहले चतुसूत्री, चार सूत्र कोई कोई तो चार सूत्र ही पढ़ते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं। चार सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेशयत शास्त्रोनित्वात् तत्व समन्वयात्, ये चार सूत्र में सब आ गया। चार सूत्र की व्याख्या भगवान जगदूर के शिष्य पद्म पादाचार्य ने लिखी थी पंचपादी का,